नमस्कार श्रोताओं, कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। हमेशा की तरह बाइबल अध्ययन लेकर हम आपकी सेवा में उपस्थित हैं। श्रोताओं, हम आशा करते हैं कि इस अध्ययन से आपको लाभ मिल रहा है। आज से हम नए नियम की पुस्तक में से मरकुस रचित सुसमाचार का अध्ययन आरंभ करेंगे, जिसमें प्रभु यीशु मसीह के जीवन और उसकी सेवकाई के विषय में बताया गया है। तो आइए, इससे पहले कि आज के अध्ययन में हम सम्मिलित हों, मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, जब से मसीहा मेरे दिल में है आया, नया हौसला मैंने जीने का पाया, जीवन सजाया सजाया। जब से मसीहा मेरे
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं आशा करता हूं कि आप सब प्रभु की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज भी परमेश्वर के वचन में से सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मित्रों, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले दिनों हम निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे थे और उस पुस्तक में हमने देखा कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों को मिस्र की गुलामी में से निकाला और इसके लिए उसने मूसा को प्रयोग में लाया। मित्रों, हमारा निर्गमन की पुस्तक का अध्ययन समाप्त हो चुका है और आज हम एक नए पुस्तक से अपने अध्ययन को आरंभ करने जा रहे हैं और वो पुस्तक है नए नियम की पुस्तक मरकुस रचित सुसमाचार। तो इसके पूर्व कि हम आज के अध्ययन को आरंभ करें और उसमें आगे बढ़ें, हम सबसे पहले इस पुस्तक के परिचय को देखना चाहते हैं। तो कृपया आप मेरे साथ अपने पेन और पेंसिल को तैयार रखें ताकि जब हम इस पुस्तक का अध्ययन करते हैं तो निश्चित रूप से हम उसके इन वचनों में से बहुत सारी बातों को जो हमारे जीवन के लिए है लिख सकें और उसके अनुसार हम अपने जीवन को चला सकें। आइए हम सबसे पहले इस पुस्तक के समय को देखें। मरकुस रचित सुसमाचार काल क्रमानुसार पहला सुसमाचार वृत्तांत है जो लिखा गया है। सत्य तो यह है कि यह पुस्तक नए नियम में सर्वप्रथम लिखी गई पुस्तकों में से एक है। यह पहली पुस्तक नहीं परंतु पहली पुस्तकों में से एक। संभवतः यह पुस्तक सन 63 से पूर्व रोम से लिखी गई थी। मित्रों, इसके लेखक के बारे में हम जानते हैं। यह व्यक्ति मार्कुस नए नियम के लेखकों में से एक था जो प्रेरित नहीं था, अर्थात यीशु मसीह का शिष्य नहीं था। मत्ती निसंदेह एक प्रेरित था और इसी प्रकार यहूना भी। लूका प्रेरित पौलुस का घनिष्ठ मित्र और अंतरंग साथी भी था। यहूना मार्कुस, यहूना उसका यहूदी नाम था जबकि मार्कुस उसका लतीनी नाम था। प्रेरितों के काम उसके 12 अध्याय उसके 12 पद में हम इसे देख सकते हैं। मित्रों, यह उस समय का संदर्भ है जब शिमोन पत्रस बंदीगिरी से मुक्त कराया गया था। यह धर्मशास्त्र में उसका पहला ऐतिहासिक उल्लेख है। स्पष्ट है कि उसकी माता यरूशलेम की कलीसिया की एक प्रतिष्ठित एवं धनवान मसीही महिला थी और निसंदेह वहां की कलीसिया उनके घर में आराधना के लिए एकत्र होती थी। मार्कुस ही तो पौलुस के साथ प्रथम प्रचार यात्रा पर गया था। वह बरनाबास का भतीजा था। इसका उल्लेख पौलुस कुलुसियों को लिखे गए अपने पत्र अध्याय 4 के 10 पद में करता है। वह निस्संदेह ही सिमोन पत्रस का आत्मिक पुत्र था, अर्थात वो प्रभु यीशु मसीह के पास लाया गया था, क्योंकि पत्रस अपने प्रथम पत्र अर्थात पहली पत्री उसके 5 अध्याय और 13 पद में कहता है। और बहुत समय तक तो मार्कुस के सुसमाचार को सिमोन पत्रस का सुसमाचार वृतांत माना जाता रहा है। इसका प्रमाण भी है जिसे हम बाद में देखेंगे। यहूना मार्कुस पौलुस और बरनाबास की पहली प्रचार यात्रा में उनके साथ हो लिया था। प्रेरितों के काम 13 अध्याय उसके 5 में हमें देखने को मिलता है। सलमीस में पहुंचकर परमेश्वर का वचन यहूदियों की आराधनाओं में सुनाया। यहूना उनका सेवक था, परंतु वह पंफुलिया के पिरगा से लौट आया। स्पष्ट है कि वह कुछ डर रहा था। मेरे विचार में हमें मार्कुस का पक्ष नहीं लेना चाहिए, उसका अपना तर्क होगा, परंतु पौलुस उसे दूसरी प्रचार यात्रा में साथ नहीं ले जाना चाहता था, जबकि बरनाबास तो चाहता था कि वह उनके साथ जाए। बरनाबास एक क्षमाशील व्यक्ति था और वह मार्कुस को क्षमा करने के लिए तैयार था, परंतु पौलुस नहीं। प्रेरितों के काम 15 अध्याय उसके 37 और 38 पद में लिखा हुआ है, जहां पर हम पढ़ते हैं, तब बरनाबास ने यहूना को जो मार्कुस कहलाता है साथ लेने का विचार किया, परंतु पौलुस ने उसे जो पंफुलिया में उनसे अलग हो गया था और काम पर उनके साथ न गया साथ ले जाना अच्छा न समझा। मित्रों, मेरे विचार से पौलुस सोच रहा था कि वह विफल हो गया। आगे हम पद 39 में पढ़ते हैं जहां पर लिखा हुआ है, सो ऐसा टंडा हुआ कि वे एक दूसरे से अलग हो गए और बरनाबास मार्कुस को लेकर जहाज पर कुप्रुस को चला गया। मित्रों, हमारे लिए तो वे धर्मशास्त्र से भी बाहर चले गए। अतः यहूना मार्कुस की सेवा के बारे में हमें बहुत कम जानकारी है। हम यह तो निश्चय ही जानते हैं कि यहूना मार्कुस ने अच्छा काम किया। पौलुस ने तिमोथियुस को लिखे अपने अंतिम संदेश में कहा, दूसरे तिमोथियों की पत्री 4 अध्याय उसके 11 पद में हम आगे पढ़ते हैं, केवल लूका मेरे साथ है, मार्कुस को लेकर चला आ, क्योंकि सेवा के लिए वह मेरे बहुत काम का है। मेरे मित्रों, सुसमाचार के इतिहास में मार्कुस के उल्लेख पर सदा ही प्रश्न उठाए जाते हैं। मेरा अपना विचार तो यह है कि इस परिकल्पना की आवश्यकता ही नहीं है। कहा जाता है कि मार्कुस को सुसमाचार के तथ्य पत्रस से प्राप्त हुए थे। अन्यों का कहना है कि उसे सुसमाचार का विवरण पौलुस से प्राप्त हुआ। मैं इस विचार का समर्थन करता हूं। उसने किसके लिए सुसमाचार लिखा? अब सवाल यह है कि उसने किसके लिए सुसमाचार लिखा था? सुसमाचार के 4 वृतांत क्यों हैं? इसका एक कारण तो यह है कि वे अलग अलग जनसमूह के लिए लिखे गए। मत्ती ने इसराइल राष्ट्र के लिए सुसमाचार लिखा था जो धार्मिक प्रवृत्ति के पाठकों के लिए था। मार्कुस ने व्यक्तिगत रूप से रोमियों के लिए लिखा था और वह रोमी के युग के अनुकूल भी है। वह दुष्कर मनुष्यों के लिए था। रोमियों ने लगभग 1000 वर्ष संसार पर राज्य किया। उनके राज्य में शांति और न्याय था, अच्छी सड़कें थी, न्याय एवं व्यवस्थाएं थी, सुरक्षा थी, परंतु यह सब बलपूर्वक किया जाता था। उनका लोहे का दंड मनुष्यों के ऊपर था जिसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ी। रोम एक कठोर तानाशाही साम्राज्य था। इसके विषय में डॉक्टर D.S. ग्रेगरी लिखते हैं, रोम का प्रयास यह था कि राजनीतिक सिद्धांत, कानून और न्याय सर्वाधिक मान्य हो। उसके नियंत्रण में मानवीय शक्ति व्यवस्था बन जाए तो वे मनुष्य जाति को अपने राज्य के अधीन कर सकते हैं, अर्थात अधीन करके सिद्ध बना सकते हैं और रोमी राज्य वैश्विक बन जाएगा। डॉक्टर रॉबर्ट कलवर अपनी पुस्तक डेनियल में कहते हैं, रोम ने संसार में वैश्विक शांति स्थापित की थी जैसे राष्ट्र संघ और अब संयुक्त राज्य संघ संसार में लाने का प्रयास करते रहे हैं। ऐसी शांति लाने का प्रयास रोम कर चुका है और ऐसी शांति संसार पर बलपूर्वक लानी ही चाहिए जिसका नियंत्रण एक शक्तिशाली पुरुष के हाथ में हो। आज निश्चय ही संसार एक ऐसे शक्तिशाली पुरुष की राह देख रहा है। मित्रों, रोमियों ने प्राचीन संसार में सक्रिय मानव शक्ति का प्रतिनिधित्व किया और इसका परिणाम यह हुआ कि वे तानाशाह बन गए। संपूर्ण अधिकार एक व्यक्ति में ही निहित थे जो निसंदेह एक संकट स्थिति थी। आज फिर से यही संकट मंडरा रहा है क्योंकि हम उसी दिशा में अग्रसर हैं। इस संदर्भ में मैं एक बार फिर से डॉक्टर डी एस ग्रेगरी का उदाहरण देना चाहता हूँ। महानतम रोम मानव जाति में श्रेष्ठ बलवान कर्मी, विजेता, व्यवस्थापक एवं शासक, केसर मानव संपूर्ण विश्व राज्य के राजदंड को उठाने योग्य था। केसर और केसरवाद रोमी विकास का अवश्यंभावी परिणाम था। जब रोम को गहरा बोध हुआ कि मानवीय हाथों में निहित प्राकृतिक न्याय पापी मनुष्य के लिए एक भयानक बात है, तब पवित्र आत्मा ने यह सम्मति की कि उसे स्वीकार करने के लिए सर्व प्रभु एवं मुक्तिदाता यीशु नासरी सौंप दे, जो संसार की आशा का मुक्तिदाता था। आज हम एक ऐसी ही स्थिति की ओर बढ़ रहे हैं, अर्थात अग्रसर हैं, जिसमें एक पुरुष द्वारा सैनिक शासन किया जाएगा। वह एक शैतानी पुरुष होगा जो पापियों पर राज करेगा और प्रजा मुक्ति के लिए पुकारेगी। इस स्थिति में एकमात्र मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह होगा। मित्रों, पौलुस ने रोमियों की कलीसिया को लिखा, मैं सुसमाचार से नहीं ला जाता, इसलिए वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए, उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। रोमियों के पत्री एक अध्याय उसके 16 पद में हम इसे पाते हैं। यही वो सामर्थ है जो दया दिखा सकती है। केसर के राज्य में संसार दया की कामना करता था, परंतु उनके पास केवल अधिकार था। उस युग में उनके अधिकार का विरोध करने का साहस किसी में नहीं था क्योंकि ऐसा करना प्राणघातक था, उससे बच निकलना असंभव था। और उन्हीं दिनों परमेश्वर ने उस मानव समूह के लिए संदेश भेजा और उस संदेश का लेखक यूहन्ना मार्कुस था। मित्रों, यूहन्ना मार्कुस शिमोन पत्रस द्वारा दिया गया सुसमाचार का विवरण प्रस्तुत करता है। आरंभिक कलीसिया में इसे सच माना और इस पर अटल रहे। उदाहरणतः कलीसियाई पितरों में से आरंभिक पपायस ने लिखा कि यूहन्ना मार्कुस ने अपना सुसमाचार वृतांत शिमोन पत्रस से पाया था। मार्कुस पत्रस के अनुवादक ने वह सब कुछ बड़ी सावधानी से लिखा है जो वह स्मरण कर पाया, परंतु मसीह के कथनों और कार्यों के क्रम में नहीं। यूसेबियस ने कहा, पत्रस का प्रचार सुनने वालों के मन में ऐसी पवित्रता और प्रकाशन भर गए थे कि वे सुनकर ही संतुष्ट नहीं थे, उन सुनी हुई शिक्षाओं का लिखित संग्रह अपने पास रखना चाहते थे। अतः उन्होंने मार्कुस से साग्रह निवेदन किया कि वह उन शिक्षाओं को लिखकर छोड़ दे जो प्रचार द्वारा उन्हें सिखलाई जा रही थी। अतः शिमोन पत्रस का सुसमाचार यूहन्ना मार्कुस की कलम से हम तक इस प्रकार पहुंचा। मित्रों, मार्कुस के सुसमाचार की विशेषताएं क्या है हम आगे देखते हैं। यह सुसमाचार कर्मठता का है क्योंकि शिमोन पत्रस ऐसा ही मनुष्य था। यह सुसमाचार रोम के लिए लिखा गया था क्योंकि वह भी कर्मठ मनुष्य था। मार्कुस के सुसमाचार में यीशु राजाओं के राजसी वस्त्र उतार कर सेवा का अंगोछा कस लेता है। मती के वृत्तांत में तो वह राजा दर्शाया गया है, परंतु मार्कुस के वृत्तांत में उसे सेवक दिखाया गया है, परंतु वह मनुष्यों का सेवक नहीं है, वह परमेश्वर का सेवक है। मार्कुस इसे हमारे प्रभु के ही शब्दों में व्यक्त करता है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र इसलिए नहीं आया कि उसकी सेवा टहल की जाए, पर इसलिए आया कि आप सेवा टहल करें और बहुतों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण दें। मार्कुस रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसके 45 पद में हम इसे पाते हैं। तब हम आगे देखते हैं मरकुस के सुसमाचार में यीशु को यहोवा का सेवक दिखाया गया है, जो यशायाह नबी के पुस्तक 42 अध्याय उसके 1 और 2 पद की भविष्यवाणी की परिपूर्णता है। मित्रों, 1864 में बर्नार्ड ने मरकुस रचित सुसमाचार के लिए कहा था, कुरनेलियुस को कहे गए पत्रस के शब्द इस सुसमाचार का उपयुक्त आदर्श वाक्य है। मित्रों, किसी ने इस पद को इस प्रकार प्रस्तुत किया, मैं पुस्तक में पढ़ता हूँ जहाँ मसीह कहलाने वाला एक पुरुष है, भलाई करता फिरता था। मेरे लिए यह बहुत ही अशांति की बात है कि मैं केवल घूमने फिरने से ही आसानी से संतुष्ट हो जाता हूँ। मित्रों, आज हम विरोधी प्रदर्शन और यात्राओं के बारे में और भलाई करने वालों के बारे में बहुत कुछ पढ़ते हैं। इनमें राजनेता और प्रचारक दोनों ही हैं। वे सब भलाई करने के बारे में कहते हैं, परंतु वे केवल घूमते फिरते रहते हैं। प्रभु यीशु अपने आकर्षक मनुष्यत्व और परिपूर्ण ईश्वरत्व में भलाई करते हुए आया था। यह सुसमाचार का केवल आरंभ है। वह मर कर फिर जी उठा, तब उसने अपनों से कहा, जाओ, तब सुसमाचार पूरा हुआ। आज यही सुसमाचार है। मित्रों, मरकुस की शैली संक्षिप्त और स्पष्टवादी, प्रशंसक एवं उत्साही, साध्विक एवं मृदु है। मरकुस अधिक शब्दों का प्रयोग नहीं करता है, वह सीधा मुद्दे की बात करता है। यह सुसमाचार कर्मठता और उपलब्धि का सुसमाचार है। यहाँ यीशु कथा कहानियों की अपेक्षा काम करने के लिए तैयार है। मरकुस की लेखन शैली सरल है, यह भिन्न स्तर के पाठकों के लिए लिखा गया है। यहाँ संयोजक शब्द और किसी अन्य शब्द की तुलना में सबसे अधिक प्रयोग किया गया है। कहा जाता है कि 1331 बार इसका उपयोग किया गया है। सच तो यह है कि यदि हम अपने स्कूल के लेखन कार्यों में इतने संयोजक और शब्द लगा दें तो हम फेल हो जाएंगे। तथापि यदि इसका यथोचित उपयोग किया जाए तो यह एक प्रभावी शब्द है। यह एक व्यक्तिवाचक शब्द है जिसका अर्थ है कुछ और भी होने वाला है। कोई भी वाक्य और के साथ समाप्त नहीं होता। यह शब्द हमें किसी अन्य कार्य की ओर ले चलता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मरकुस ने यह सुसमाचार का वृतांत रोम में लिखा था, और स्पष्ट है कि वह रोमियों के लिए लिखा था, और यह स्पष्ट है कि यह रोमियों के लिए था क्योंकि वे व्यस्त लोग थे जो अधिकार और कर्म में विश्वास रखते थे। वे एक प्रश्न का उत्तर चाहते थे, क्या यीशु किसी काम के करने योग्य है? यह सुसमाचार किसी व्यस्त व्यक्ति के लिए पढ़ने का समय निकालने योग्य है? पुराने नियम के संदर्भ और यहूदी प्रथाओं का उल्लेख एक और प्रमाण है कि यह सुसमाचार परदेशियों के लिए लिखा गया था। मित्रों, मत्ती यीशु की वंशावली देता है क्योंकि राजा के लिए वंशावली आवश्यक थी। मरकुस वंशावली नहीं देता है क्योंकि सेवक को अपने वंशावली दिखाना आवश्यक नहीं था। सेवक को काम करना होता था, जो हम इस सुसमाचार में देखेंगे, क्योंकि यीशु का चित्रण इसी रूप में किया गया है। अब हम इस पुस्तक की रूपरेखा को देखते हैं, जिसमें सबसे पहले यीशु का परिचय हम देखेंगे। पहला है यूहन्ना द्वारा सेवक का परिचय, जिसे हम मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 1 पद से 8 में पाते हैं, और यूहन्ना का निधन 6 अध्याय उसके 14 से 29 पद में पाते हैं। अब दूसरा है पिता परमेश्वर सेवक को स्वीकारते हैं। मरकुस रचित सुसमाचार 1 अध्याय उसके 9 से 11 पद में हम इसे पाते हैं, और रूपांतरण 9 अध्याय उसके 1 से 8 पद में पाते हैं। अब तीसरी बात है परीक्षा सेवक की सेवा का आरंभ करती है, जिसे हम मरकुस 1 अध्याय उसके 12 से 13 पद में पाते हैं, और चौथा है करनी और कथनी सेवक को प्रकट करते हैं, इसे हम मरकुस 1 अध्याय 14 से 13 अध्याय के 37 पद में पाते हैं। मित्रों, अब हम आगे चमत्कार के बारे में हम देखते हैं। पहला है चंगाई, ये शारीरिक चंगाई। दूसरा पत्रस की सास बुखार और अन्य लोग, जिसमें मरकुस 1 उसके 29 से 34 में हम पाते हैं। दूसरा है कोढ़ी, 1 अध्याय 40 से 45 पद। तीसरा लकवे का रोगी छत में से उतारा गया, 2 अध्याय 1 से 12 पद। चौथा सूखे हाथ वाला मनुष्य, 3 अध्याय 1 पद से 5 पद तक। पांचवा गलील सागर के निकट अनेक लोगों का चंगा होना, 3 अध्याय 6 पद से 10 पद तक। छठवा लोहू बहने के रोग से ग्रस्त स्त्री, 5 अध्याय उसके 21 से 34 पद तक। सतवा शिष्य भी चंगा करते हैं, 6 अध्याय उसके 13 पद, 8वां गन्नेसरत में रोगियों की चंगाई 6 अध्याय 53 से 56 पद, 10वां दिकापुलिस का बहरा और हकला व्यक्ति 7 अध्याय 31 से 37 पद, 11 बैतसदा का अंधा व्यक्ति 10 अध्याय 46 से 52 पद, 12 अंधा बर्तिमाई 10 अध्याय 46 से 52 पद। अब हम आगे देखते हैं प्रकृति पर अधिकार। पहला है आंधी को थमाना 4 अध्याय 35 से 41 पद। दूसरा 5,000 लोगों को भोजन खिलाना 6 अध्याय 32 पद से 44 पद। तीसरा पानी पर चलना 6 अध्याय 45 से 52 पद। चौथा 4,000 को खाना खिलाना 8 अध्याय 1 से 9 पद। पांचवा अंजीर के वृक्ष को श्राप देना 11 अध्याय 12 और 14 पद। उसका तीसरा हम देखते हैं अब दृष्टांत। इसमें पहला है आराधनालय में उपस्थित व्यक्ति 1 अध्याय उसके 21 से 27 पद। दूसरा कफरनहूम में अनेक दुष्ट आत्मा ग्रस्त 1 अध्याय 32 से 34 पद। तीसरा गलील में दुष्ट आत्माएं 1 अध्याय उसका 39 पद। चौथा गलील सागर क्षेत्र में अशुद्ध आत्माएं 3 अध्याय 11 और 12 पद। पांचवा शास्त्रियों का आरोप बलजबुल की शक्ति उसमें है 3 अध्याय 22 से 32 पद। छठवां गदरेनियों के देश में दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति 5 अध्याय 1 से 20 पद। सतवां सुरुफिनिकी स्त्री की दुष्ट आत्मा ग्रस्त पुत्री 7 अध्याय 24 से 30 पद। आठवां दुष्ट आत्मा ग्रस्त युवक 9 अध्याय उसके 14 से 27 पद। उसके बाद नवा मृतकों को पुनर्जीवित करना जो अलौकिक है याइर की मृत पुत्री 5 अध्याय 35 से 43 पद तक। अब दृष्टांत और शिक्षा। पहला है दृष्टांत, उसमें हम पाते हैं वर की उपस्थिति में उपवास 2 अध्याय 19 और 20 पद। दूसरा है पुराने वस्त्र में नया पैबंद 2 अध्याय उसका 21 पद। तीसरा है पुरानी मशकों में नई मदिरा 2 अध्याय 22 पद। चौथा है बीज बोने का दृष्टांत 4 अध्याय 1 से 20 पद। पांचवा है दिया और पैमाना 4 अध्याय 21 से 25 पद। छठवां है उगने वाला बीज 4 अध्याय 26 से 29 पद। सातवां है राई का दाना 4 अध्याय 30 से 34 पद। और आठवां है दुष्ट किसान 12 अध्याय 1 से 12 पद। और नवा है अंजीर का वृक्ष 13 अध्याय 28 से 33 पद। दसवां है परदेश यात्रा पर स्वामी 13 अध्याय 34 से 37 पद। अब है विविध शिक्षाएं। इसमें पहला है राज्य के सुसमाचार का प्रचार 1 अध्याय 14 और 15 पद। दूसरा गलील में शिक्षा 1 अध्याय 28, 35 से 39 पद। तीसरा है सप्त का दिन 2 अध्याय 23 से 28 पद। चौथा है नया संबंध 3 अध्याय 31 से 35 पद। पांचवा है नासरत के आराधनालय में 6 अध्याय 1 से 6 पद। छठवां है 12 का भेजा जाना 6 अध्याय 7 से 13 पद। सातवां 12 का लौट आना 6 अध्याय 30 से 31 पद। आठवां फरीसियों की निंदा 7 अध्याय 1 से 23 पद। नवा खमीर की व्याख्या 8 अध्याय 10 से 21 पद। 10 मसीह की मृत्यु 8 अध्याय 27 से 38 पद। 9 अध्याय 30 से 32 पद। 10 अध्याय 32 से 34 पद। और 11वां महान होने के गुण 9 अध्याय 33 से 37 पद। और 12वां दलबंदी की आलोचना 9 अध्याय 38 से 41 पद। 13 नरक 9 अध्याय 42 से 50 पद। 14 विवाह 10 अध्याय 1 से 16 पद। 15 धन संपदा 10 अध्याय 23 से 31 पद। 16 प्रार्थना 11 अध्याय 22 पद से 26 पद। 17वां यीशु का अधिकार 11 अध्याय 27 से 33 पद। 18 कर चुकाना 12 अध्याय 13 से 17 पद। 19 पुनरुत्थान 12 अध्याय 18 से 27 पद। 20 महा आज्ञा 12 अध्याय 28 से 34 पद। 21 मसीह 12 अध्याय 35 से 40 पद। 22 जैतून पर्वत की बातें 13 अध्याय 1 से 27 पद। अब हम घटनाओं को देखते हैं। पहला है शिष्यों का आह्वान, 1 अध्याय उसके 16 से 20 पद, 2 अध्याय के 13 से 18 पद, 3 अध्याय उसके 13 से 21 पद। और दूसरा में हम देखते हैं यहूना बपतिस्मा देने वाले का निधन, 6 अध्याय 14 से 29 पद। तीसरा है रूपांतरण, 9 अध्याय 1 से 13 पद। चौथा है धनी युवा शासक, 10 अध्याय 17 पद से 22 पद तक। पांचवा याकूब और यहूना की महत्वाकांक्षाएं, 10 अध्याय 35 से 45 पद। और छठवां है विजय प्रवेश, 11 अध्याय 1 से 11 पद। सातवां है यीशु द्वारा मंदिर का शोधन करना, 11 अध्याय 15 से 18 पद। आठवां अंजीर के वृक्ष का सूख जाना, 11 अध्याय 19 से 21 पद। नौवां विधवा की दमड़ी, 12 अध्याय 41 से 44 पद। अब हम आगे देखते हैं सेवक की मृत्यु, दफन और पुनरुत्थान। पहला है यीशु को मारने का षड्यंत्र, 14 अध्याय 1 और 2 पद। दूसरा है बैतनिया में यीशु भोजन पर, 14 अध्याय 3 से 9 पद। तीसरा है यहूदा यीशु को पकड़वाने का सौदा करता है, 14 अध्याय 10 से 11 पद। चौथा फसा का पर्व, 14 अध्याय 12 से 26 पद। पांचवा है गतसमनी की वाटिका, 14 अध्याय 27 से 42 पद। छठवां यीशु का पकड़ा जाना, 14 अध्याय 43 से 52 पद। सातवां यीशु का अभियोग, 14 अध्याय 53 से 15 अध्याय के 15 पद। आठवां यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना, 15 अध्याय 16 से 41 पद। नौवां दफन, 15 अध्याय 42 से 47 पद। दसवां पुनरुत्थान, 16 अध्याय 1 से 20 पद। मित्रों, इस पुस्तक की यही रूपरेखा है और मैं विश्वास करता हूं कि इस रूपरेखा के अंतर्गत जब हम आगे अध्ययन करेंगे तो निश्चित रूप से आप इस पुस्तक की उन महत्वताओं को जानेंगे और परमेश्वर के उन आशीषों को अपने जीवन में ग्रहण करेंगे। आज हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। हम अगले अध्ययन में इसके 1 अध्याय से अपने अध्ययन को जारी रखेंगे। कृपया आप इसे सुनना न भूलें, अपने मित्रों को भी इसके बारे में बताएं ताकि वे भी परमेश्वर के वचन को सुने और अपने जीवन में आशीष को प्राप्त करें। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दें।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। तो यदि आप इन्हें प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन TWR पोस्ट बॉक्स नंबर 4310 न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओं, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।